तफसीर तर्जुमा सुनने के बाद आप आयात की तिलावत सुनते हैं।
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون
الحمد للہ تلاوت آپ نے سنی کتنی خوبصورت آیات ہیں دلوں کو نرم کرنے والی اور یہ آیات جو ہیں اپنے جسم کے اندر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کو جذب کر لیں ہم ان پہ عمل کریں آج کے سبق میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی عہد شکنیوں کی یاد دہانی کرائی ہے ان کی عہد شکنیوں کی فہرست گنوائی ہے کہ کیسا تھا ان کا کردار کیسے تھے ان کے رویے اور ان کے رویوں کو ایک کے کر کے بیان کیا گیا اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان کا یہ جو کردار ہے ان کا کردار بول رہا ہے بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو امامت کے منصب سے معزول کر دے ان کی جگہ ایک دوسری امت کو اٹھائے جو دنیا میں جو ہے وہ اللہ کے دین کو پیش کرے اسے قائم کرے بیچ بیچ میں مسلمانوں سے بھی خطاب کیا گیا ہے اور یہودیوں کے کردار کو سامنے رکھ کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں تم وہ کام نہ کرنا جو بنی اسرائیل نے کیے اور آج کا سبق جو ہے گائے کے ایک واقعے سے شروع ہوتا ہے اللہ رب العزت نے یہ کیوں کہا کہ گائے ذبح کی جائے بنی اسرائیل کو ایک گائے کے ذبح کرنے کا کیوں حکم دیا دراصل بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص جو تھا وہ قتل ہو گیا اور قاتل کا پتہ نہیں چلتا تھا اور قاتل تھے اس کے بھتیجے جنہوں نے جنگل میں موقع پا کر رات کے اندھیرے میں अपने चचा को कत्ल किया ताकि चचा की विरासत पर कब्जा किया जाए, और फिर उसकी मैयत को उठाकर किसी दूसरे शख्स के मकान के बाहर फेंक दिया। अब जो है वो लोगों में झगड़ा होने लगा, क्योंकि कातिल का पता नहीं चलता था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मूसा अलैहिस्सलाम को वही की कि अपनी कौम को हुक्म दीजिए कि वो एक गाय को जिबा करे और उसके गोश्त का एक टुकड़ा लाश पर मारे, और लाश खुद बोलकर अपने कातिल का नाम और पता बताएगी। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का हुक्म अपनी कौम को सुनाया तो वो कहने लगे, क्या अल्लाह हमसे मजाक करता है? दरअसल वो गाय की पूजा करते थे और अल्लाह के हुक्म पर अमल करने की बजाय वो कीलो काल करने लगे, वो सवाल करने लगे, और जूं जूं वो सवाल करने लगे तू तू पाबंदियां बढ़ती गईं। अब उनके सवालात के नतीजे में, जो कसरते सवाल सवालात किया करते थे, उसके नतीजे में एक ही गाय रह गई थी जो सुनहरी रंग की थी, खूबसूरत, बेदाग, जवान, गहरा जर्द रंग, और ऐसी गाय जिसे वो पूजा पाठ के लिए जो थे वो उन्होंने मुंतखब किया हुआ था। और कहते हैं कि ये जो गाय थी ये एक शख्स के पास थी और वो एक नेक बख्त इंसान था, अपनी माँ की बहुत खिदमत करता था। जब उसको पता चला कि ये गाय की इतनी ज्यादा कीमत है तो उसने मुंह भरकर इस गाय की कीमत मांगी। इसकी कीमत ये ठहरी कि गाय को जिबा करके इसकी खाल में जितना सोना आए वो इसकी कीमत होगी, और इस तरह बनी इसराइल को उसकी कीमत जो है वो अदा करना पड़ी। आइए जो है इस कहानी को पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कहानी, ये वाकया हमारी जिंदगी में अमल के लिए जो है वो क्या पैगाम देता है। वइज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही, और जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से। मूसा अलैहिस्सलाम एक जलीलुल कदर पैगंबर थे और उन्होंने अपनी कौम से कहा, कौम कौन थी? बनी इसराइल। इन अल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बकरा, के बेशक अल्लाह तुमको हुक्म देता है। यअमुरुकुम, हमजा मीम रा, अमर, और उर्दू में भी आप पढ़ती हैं अमर जो है ये हुक्म के लिए लफ्ज जो है वो इस्तेमाल होता है, कि अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है अन तज़बहू, के तुम जिबा करो। ज़ाल बाहा, जिबा करना, ये भी आप उर्दू में इस्तेमाल करती हैं कि अंत बहू के तुम सब जिबा करो। पूरी कौम से कहा जा रहा है, क्या जिबा करना है? बकरा, एक गाय। और बकरा तुम जो है ये वाहिद है और बा काफ्रा ये इस्म जिन्स है, और आपको पता ही है कि जो लफ्ज इस्म जिन्स होता है वो गाय, बैल, मुजक्कर, मुअन्नस किसी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पे बकरा तुम के मानी है कि नर हो या मादा, बैल भी हो सकता है या फिर गाय, तो उसको जो है वो जिबा किया जाए। कालू, वो बोले, अतत्तखिज़ुना हुजुआ, क्या तू हमसे मजाक करता है? तत्तखिज़ु जो है आपको पता ही है, हमजा खा जाल, अखज करना, पकड़ना, तो अतत्तखिज़ुना, क्या तू हमसे करता है हुजुआ, मजाक। और ये जो हुजुआ लफ्ज है इसका रूट है हा जा हमजा, हा दो चश्मी, फिर जे लिखे और फिर हमजा। अंदरूनी तौर पर किसी का मजाक उड़ाना, जानबूझकर मजाक उड़ाना, जैसे हंसी करना, ठट्ठा करना, और किसी का जो है वो मजाक उड़ाना। अब आप देखें कि अल्लाह का हुक्म है, पैगंबर उनसे बात कर रहा है, पैगंबर है मूसा अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल कदर, और बनी इसराइल के लोग कह रहे हैं कि ए मूसा, क्या तुम हमसे मजाक करते हो? काला, कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, अऊज़ु बिल्लाही, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, अन अकूना मिनल जाहिलीन, कि मैं जाहिलों की सी बातें करूं। अन अकूना, मैं हो जाऊं, मिनल जाहिलीन, जाहिलों में से। जीम हा लाम, और ये कहते हैं नादानी को, जाहिल वाहिद है और जाहिलीन इसकी जमा है। अब मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आपसे मजाक करूं या नादानी की सी बातें करूं, कि अल्लाह का हुक्म कह के फिर मैं तुम्हें ऐसा काम कहूं जो अल्लाह ने नहीं कहा। पालू, बनी इसराइल के लोग बोले, उदु लना रब्बका युबैन लना माही, वो बोले उदु लना, हमारे लिए दुआ करो। उदू जो है इसका रूट है दाल ऐन मो और इसके मानी है दुआ करो, लना हमारे लिए, रब्बा का अपने रब से। अब आप ये नहीं कहते कि हमारे रब से पूछो, कह रहे हैं कि भला अपने रब से जरा दुआ तो करो, युबैयिन कि वो बयान करे। युबैयिन का लफ्ज जो है ये बा या नून से निकला है, इसके मानी होते हैं जो चीज बिल्कुल वाजे हो, क्लियर हो, खुद क्लियर हो और दूसरे को भी क्लियर कर दे, कि युबैयिन वो बयान करे, लना हमारे लिए, माहिया कि वो कैसी हो। के अब ये देखें कि हिया की यहाँ पे जमीर गाय के लिए आई है कि वो हमें गाय की कुछ तफसील बताए, युबैयिन तफसील वजाहत। काला कहा, किसने कहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने, इन्नहु यकूलु बेशक वो फरमाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, इन्नहा बकरतुल्ला फारिदुन वला बिक्र, के बेशक वो एक गाय है, ला फारिदुन ना वो बूढ़ी हो, वला बिक्र और ना ही छोटी। अब आप देखें कि यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल हुआ है फारिदुन का और फारा द्वाद इसका रूट है, लफ्जी मानी होते हैं जैसे फर्ज करना, किसी सख्त चीज को काटना, जैसे अगर कोई मुअय्यन चीज काट ली जाए, उसके अंदर सुराख कर लिया जाए, तो मानी होते हैं किसी चीज को अपने ऊपर लाजिम कर लेना, वाजिब ठहराना। गोश्त के कट जाने, कम हो जाने के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उम्र का वो हिस्सा जब गोश्त घुलता है या कम होता है तो फिर क्या होता है, बुढ़ापा आ जाता है ना, तो यहाँ पे फारिदुन लफ्ज जो है ये बुढ़ापे के लिए या उम्र रसीदा के लिए इस्तेमाल हुआ है, कि ऐसी गाय जो बूढ़ी ना हो, या फारिदुन बूढ़ी ना हो, वला बिक्र, और बा काफरा ये इस्म जिन्स है, कंवारा कंवारी दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, इसके मानी है कि वो गाय जो है छोटी नहीं होनी चाहिए। अवानुन आयन वो नून, इसके मानी है उधेड़ उम्र वाला होना, दरमियानी उम्र होना, और ये लफ्ज इंसान हैवान औरत मर्द सबके लिए इस्तेमाल होता है, तो कहा अवानुन दरमियानी हो, बेना जालिक इसके, बेना का लफ्ज भी दरमियान के लिए इस्तेमाल होता है। तो अब मूसा अलैहिस्सलाम जो है बता रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो गाय की तफसील बताई है, तो गाय ऐसी होनी चाहिए ना बहुत बूढ़ी हो ना बहुत छोटी हो, बल्कि दरमियानी उम्र औसत उम्र की हो, और साथ ही कहा फअलू मा तुमरून, लिहाजा कर गुजरो जो तुम्हें हुक्म दिया जाता है। फअलू ये ऑर्डर का सीगा है, इफल और इफअलू तुम सब करो, मा तुमरून जिसका तुम्हें हुक्म दिया जाता है। अब आप देखें कि तुमरून लफ्ज आपने यहाँ पे पढ़ा है और इससे पहले भी जो आप पढ़ चुकी हैं, या मुरुकुम और तो मरून इसका एक ही रूट है, हमजा मीमरा अमर। पालू बनी इसराइल के लोग बोले, उदू लना रब्बा का युबैयिन लना मा लौनुहा, कहने लगे पूछ कर बताओ हमें, उदू दुआ करो, दरखास्त करो हमारे लिए, रब्बा का अपने रब से। कैसे जालिम थे कि ये नहीं कहते थे कि हमारे रब से, कहते थे मूसा मूसा अलैहिस्सलाम अपने रब से पूछकर बताओ, युबैयिन लना कि वो बयान करे, वाजे करे हमारे लिए, मा लौनुहा कि उसका रंग कैसा हो। लाम वो नून ये रंग को कहते हैं और वो रंग जो कुदरती रंग होता है, सिबगा का लफ्ज भी आता है ना, सिबगा उस रंग को कहते हैं जो चढ़ाया जाता है, लेकिन लौन कुदरती रंग को कहते हैं, कि कहा पूछ कर बताओ उसका रंग कैसा हो। ये उनका तीसरा सवाल था, पहला सवाल क्या था कि क्या तू हमसे मजाक करता है, दूसरा उनका सवाल था कि हमें जो है अपने रब से इसकी जरा वजाहत करके बताओ, हमें पता नहीं चल रहा, तीसरा सवाल था कि उसका रंग के बारे में पूछ रहे हैं, क्योंकि जब अमल ना करना हो तो ना करने के 100 बहाने। क़ाला इन्नहु यकूलु, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा वो फरमाता है, इन्नहा बकरतुन के वो बेशक एक गाय है, सफराउ गहरे जर्द रंग की। सफरा जो है ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, जर्द रंग, और इसकी जमा है सुफ्र। और वैसे अगर आप देखें तो रंग रंग के लिए असफर भी लोग इस्तेमाल करते हैं ना, मुजक्कर है, और सफराउ मुअन्नस। तो चूंकि गाय मुअन्नस है तो इसलिए यहां पर आया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि गाय का रंग जो है वो गहरा जर्द होना चाहिए। फाकेउन फे काफ आयन, इसके मानी होते हैं रंग का साफ और खालिस होना, गहरा जर्द होना। इसका इस्तेमाल जो फका है ज्यादातर जर्द रंग के लिए आता है, और यहां पर ये जो है वो सफरा की ताकीद के लिए आया है कि गहरा जर्द चमकता हुआ सुनहरी रंग होना चाहिए। लौनुहा, उसका रंग, तसुरुन नाजरीन, के देखने वालों का दिल जो है वो खुश हो जाए। तसुरु सीन रारा, खुश लगना, अच्छा लगना, जैसे आप देखें कि मुसर्रत लोग नाम रखते हैं सुरूर, तो उर्दू में भी आप इस्तेमाल करते हैं। नाजिर कहते हैं देखने वाले को, और नाजरीन यहाँ पे जमा है, और नजर भी आप बोलती हैं नून जोरा, तो देखने वालों को अच्छा लगे। अब ये वो रंग था जिसकी बनी इसराइल जो थे पूजा करते थे। अब उन्होंने चौथा सवाल पूछा, काल, वो बोले, उदू लना रब्बा का, अपने रब से पूछिए, दुआ कीजिए, दरखास्त कीजिए, युबय्यिन लना माही, कि वो साफ साफ हमें बताए कि कैसी गाय चाहिए। इन्नल बकरा तशाबहा अलैना, अब आप देखें कि कैसी ज्यादती थी और कैसी थी उनकी बातें, कि पूछ रहे हैं कि हमें तो गाय के बारे में शुबा हो गया है, हमें उसके बारे में इश्तबा हो गया है। यहाँ पे तशाबाह का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, इसका रूट है शीनबाहा, और इसके मानी है कि गाय के मुतल्लिक के हम कैसे गाय को जो है वो लें या खरीदें, तो उसके तायुन में हमें जो है ना शक पड़ गया है। वह इन्ना इंशाअल्लाहु लमुहतदून, और अगर अल्लाह ने चाहा तो हम इसका पता जो है वो पा लेंगे। शाह जो है शीन या हमजा शई को कहते हैं, और इंशाअल्लाहु अगर अल्लाह ने चाहा, लमुहतदून, तो हम इसका पता जो है वो पा लेंगे। इसके मानी ये हैं कि हमें पता चल जाएगा कि कैसी गाय जो है उसको हमें ज़िबा करना है। अब आप देखें कि कौम है कि सवाल करती चली गई और किलो काल करती गई, पाबंदियां हैं कि बढ़ती चली गई। अबू हुरैरा रजी अल्लाह नो कहते हैं, अगर बनी इसराइल इंशाअल्लाह न कहते तो उन्हें कयामत तक ऐसी गाय का पता ना चलता। तो अंबिया से कसरत सवाल करना ये परले दर्जे की गुस्ताखी है। तो बनी इसराइल की फितरत थी कि वो अमल करने की बजाय जो थे उसको टालते थे, वो बहुत ज्यादा तफसीलात पूछते थे, बातें करते थे, और जैसे होता है ना कि बाज लोग बहुत बातूनी होते हैं और अमल करने की बजाय इधर सवाल पूछा उधर सवाल पूछा, और इतने सवाल पूछते हैं कि जो है वो अमल से और दूर होता चले जाते हैं। तो अब आप देखें कि यहां पे जो बात हमारे सामने आती है वो ये कि सवाल पे सवाल पूछ रहे हैं, हालांकि अल्लाह ने ये हुक्म दिया था कि तुम गाय ज़िबा करो, और अल्लाह के हुक्म मिलने पर अगर वो गाय ज़िबा कर देते तो कोई भी गाय ज़िबा कर देते तो जो है उनका फर्ज अदा हो जाता। लेकिन जूं जूं उन्होंने सवाल किए तू तू कसरत जो है वो जूं जूं सवाल किए तू तू पाबंदी बढ़ती गई। पाला मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, इन्नहु यकूलु, बेशक वो कहता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, इन्नहा बकरतुन, कि वो एक गाय है, या जलूलुन, नहीं मुती, जाल लाम लाम, इसके मानी होते हैं सवारी का मुती होना, नहायत मुती, कि ऐसी गाय है कि ऐसा नहीं है कि उससे कोई खिदमत ली जाती हो। क्योंकि जो मुती गाय होती है वो क्या करती है कि जैसे वो खेत के अंदर हल चलाए, तो जिस गाय की वो इबादत करते थे ना उससे कोई काम नहीं लेते थे। अब कहा कि ला जलूलुन, के वो मुती नहीं है, तो सीरुल अर्दा, के जो के जमीन को जो है वो थाड़ती हो। तो सीरु जो है इसका रूट है साबोरा, इसके मानी होते हैं खुरेदना, फाड़ना, उठाना, फैलाना। बैल को भी सौर कहा जाता है अरबी जबान में। अब बैल क्या करता है, जमीन में हल चलाता है, और इल्म की रिसर्च के लिए, क्योंकि जब इल्म की रिसर्च की जाती है तो तहकीक की जाती है ना, तो जैसे डिगिंग की जाती है उसके लिए भी लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो फरमाया कि वो जमीन जो है उसको जो है वो खोती ना हो, खुरेती ना हो, जमीन में जोती ना जाती हो, वला तस्किल हरसा, और ना ही वो खेती को पानी देती हो। और तस्की जो है, पीछे भी आप पढ़ चुकी हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जो है वो अपनी कौम के लिए जो है वो पानी की दुआ की थी। वहां आपने पढ़ा था वह इज तस्का आयत 60 में, और इसका रूट क्या है, सीन काफ या और साकी, जैसे पानी मांगना, पानी के लिए इस्तेमाल होता है। और यहाँ पे भी है कि वला तस्किल हरसा, कि वो खेती को पानी ना पिलाती हो। और अल हर्स का लफ्ज जो है हारासा, ये खेती के लिए भी इस्तेमाल होता है और बीज बोने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मुसल्लमतुन सीन लामीम, इसके मानी है सलामत, पूरी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। ला नहीं, शियाता, शियाता का रूट है वोशीन या। अब आप देखें कि आपको यहाँ पे वो नजर नहीं आ रही, लेकिन इसके अंदर असल जो इसका लफ्ज है, इसके अंदर वो है। इसका रूट है वोशीन या, किसी चीज में उसके तमाम रंग के खिलाफ और रंग लगाना। जैसे आप देखें कि जब कुर्बानी का बकरा या गाय ली जाती है तो लोग उसके ऊपर रंग लगा देते हैं, तो वो क्या होता है, वशिया, रंग लगाना। अब कहा जा रहा है मुसल्लमतुन से ही सालिम होना चाहिए, ला शिया तफीहा, और बेदाग होनी चाहिए, कोई रंग नहीं उसमें होना चाहिए। पालू, वो बोले अलान जेता बिल हक, अब लाया है तू हक। जेता इसका रूट है जीम या हमजा बिल हक की, अब तू हक के साथ आया है। फजबहुहा, फिर उन्होंने इसको जिबा कर दिया। वमा कादू यफअलून, और वो नहीं थे इसको जिबा करने वाले। अब आप देखिए कि इस पूरे वाक्य से क्या बात पता चलती है कि इतने सवालों जवाब के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं कि उन्होंने कहा अलान जेता बिल हक, अब तू हक लेकर आया है। हालांकि पहली बात जो मूसा अलैहिस्सलाम ने कही थी वो अल्लाह का हुक्म था और हक था, तो उनको क्या करना चाहिए था, जिबा करते। फजबहूहा, फिर उन्होंने उसको जिबा कर दिया। वमा कादू यफअलून, और वो नहीं थे ऐसा करने वाले। तो आप जायजा लीजिए अपनी जिंदगी का कि इस कहानी से आपको अपनी अमली जिंदगी में अमल का कौन सा उसूल लेना है, कि अल्लाह के अहकामात हैं और अल्लाह के अहकामात पर अमल करने की बजाय आप जो है जब अमल नहीं करना चाहती तो क्या करती हैं, सवाल पे सवाल। जैसे जो है वो एक दफा एक शख्स जो था वो बीमार हुआ और उसने अपने नौकर से कहा कि जाओ और मेरे लिए दवाई ले आओ। तो नौकर कहने लगा कि हजरत अगर मैं गया तो पता नहीं मुझे हकीम मिलेगा कि नहीं। तो मालिक ने कहा कि कह रहा हूं ना कि जाओ, जाओगे तो मिल जाएगा। फिर उसने कहा कि हजरत पता नहीं मैं जाऊंगा तो दवाई देगा कि नहीं। फिर उसने कहा कि बातें नहीं करो और जाओ। फिर कहने लगा कि हजरत अगर उसने दवाई दे दी पता नहीं असर करेगी कि नहीं। तो फिर मालिक ने उसको डांटा कि जाओ, और फिर कहने लगा कि हजरत जो है वो मरना तो है ही, तो आज मरे या कल तो फिर दवाई क्या लानी। तो आप देखें कि जब कोई अमल नहीं करना होता तो जैसे मैं कुरान की क्लास में आना नहीं चाहती इसलिए कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, पता नहीं मुझे वक्त मिलेगा कि नहीं, असल में मैं अब याद नहीं कर सकती, या ये कि मेरा जहन काम नहीं करता, मेरी मसरूफियत बहुत ज्यादा है, मेरे काम बहुत ज्यादा है, पता नहीं अब मैं लिख सकूंगी कि नहीं। इतना अरसा हो गया है कुरान को लिखना, लिखाई पढ़ाई बहुत अच्छे से छोड़ दिया है। तो आप याद रखें कि जिंदगी एक इम्तहान है और अल्लाह ताला ने हमें अमल करने के जो उसूल दिए हैं, जो तरीके दिए हैं, जो आयात दिए हैं, इस पे रुकना नहीं चाहिए, बातें नहीं बनानी चाहिए, जो और जितनी समझ आती जाए उसको अपनी जिंदगी में नाफिज करते जाएं। तो जायजा लीजिए कि कहाँ कहाँ मेरा रवैया जो है वो बनी इसराइल की तरह है, कि नहीं करना चाहती तो कभी मैं शोहर पे कह देती हूँ कि असल में शोहर जो है ना वो मुझे पर्दा नहीं करने देता, बच्चों की वजह से मैं कुरान की क्लास में नहीं आना चाहती, या ये कि असल में कभी किसी का नाम कभी किसी का नाम। वमा कादू यफलून, और वैसा करते मालूम नहीं होते थे। वाइज कतल तुम नफसन, और जब तुमने एक शख्स की जान ली थी, ये वही शख्स जिसके लिए चचा को जब कत्ल कर दिया गया तो कातिल का पता नहीं चलता था, तो अब उसी का जो है यहाँ पे जिक्र हो रहा है। वाइज कतल तुम नफसन, جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی، فدارتم فیہا، پھر تم اس کے بارے میں آپس میں جھگڑا کرنے لگے. اور یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے فدارتم، اس کا روٹ ہے دال را حمزہ، نیزے کو کہتے ہیں. اس کے معنی ہوتے ہیں ایک جانب مائل ہونا، دور کرنا، دفع کرنا. جیسے نیزے سے کوئی چیز اپنے سے دور کی جاتی ہے نا، تو یہ لفظ جو ہے یہ آپس میں جھگڑا کرنا اور ایک دوسرے پر الزام لگانا، اس کے لیے یہ لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. کہ پھر تم لوگ کیا کرنے لگے کہ جھگڑا کر کے ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے، اپنے سے الزام کو پھینکنے لگے، دفع کرنے لگے اور دوسرے پر الزام دھرنے لگے. تو چونکہ قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو ایک دوسرے سے لوگ جو تھے وہ لڑ رہے تھے اور جھگڑا کر رہے تھے. فدارتم فیہا، پھر تم آپس میں جھگڑنے لگے. فیہا یعنی اس لاش کے بارے میں کہ اس کا قاتل کون ہے. واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ نکال لینے والا تھا ما کنتم اس بات کو جو تم چھپاتے تھے. تو مخرجون خراجہ، اللہ ظاہر کرنے والا تھا. تکتمون کتما سے ہے، جس کو تم نے چھپایا تھا. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پہ اللہ رب العزت کا یہ کہنا کہ جو ہے وہ تم نے جب قتل کر لیا تھا اور تم سمجھے کہ پتہ ہی نہیں چلے گا، اور اللہ رب العزت جو ہیں اس کو ظاہر کرنے والے تھے. اس کے معنی یہ ہیں کہ جس طرح اللہ تعالی نے جو ہے وہ تمہارے اس پوشیدہ عمل کو ظاہر کر دیا، بالکل اسی طرح قیامت آئے گی جب تو ہر ایک کے اعمال جو ہیں ان کو جوابدہی کرنی ہوگی، اور ہر ایک کو پتا چلے گا کہ وہ دنیا میں جو ہے وہ کیسے عمل کرتا رہا. فرمایا فقلنا، پس ہم نے حکم دیا اضربوہ، کہ اس کو مارو. تو اللہ رب العزت نے جو ہے اس وقت یہ حکم دیا کہ اضربوہ، کہ اس کو مارو. کس کو مارو؟ کہ جو مقتول کی لاش ہے اس کو مارو. بے بادیہا، وہ جو گائے ذبح کی گئی تھی نا اس کا ایک ٹکڑا لے کر، تو گائے کا ایک ٹکڑا لے کر جب مقتول کی لاش کو تم مارو گے تو وہ جو ہے نا مقتول زندہ ہو جائے گا اور وہ اٹھ کر بتائے گا کہ میرا قاتل کون ہے. اور جب گائے کو ذبح کیا گیا اور اس کا ایک حصہ لے کر لاش کو جب مارا گیا تو لاش زندہ ہو گئی اور مقتول اٹھا، اس نے قاتل کا پتہ بتایا اور اس کے بعد جو ہے وہ مر گیا، اس کا نام اس کا پتہ بتا کے وہ پھر مر گیا. وَيُرِيكُمُ اللَّهُ آيَاتِهِ، اسی طرح اللہ اپنی آیات دکھاتا ہے. کیسے؟ پہلے حصے کو پڑھیے، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح اللہ زندہ کرتا ہے مردے کو. تو جس طرح جو مقتول تھا وہ زندہ ہوا اور اس نے بتایا کہ میرا قاتل کون ہے، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تم سب کو زندہ کرے گا. اور پھر جو ہے وہ تم سے جو ہے وہ پوچھے گا کہ تم نے دنیا میں جو ہے وہ کیا کیا. تو دراصل یہ جو واقعہ ہے یہ بتاتا ہے کہ قیامت آئے گی اور ایمان بالآخرت جو ہے یہ ایمان کا انتہائی اہم سکون ہے، انتہائی اہم ستون ہے، اور اس پر ایمان لانا چاہیے. تو دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. وہ یوریکم راہم زایا، دکھاتا ہے تم کو آیات ہی اپنی نشانیاں، لعلکم تعقلون، شاید کہ تم جو ہے وہ عقل سے کام لو. تو معنی اس کے یہ ہیں کہ شاید جو ہے تم لوگ جو ہے وہ سمجھو کہ مجھے مرنا ہے اور اللہ کے پاس جانے کی تیاری کرنی ہے. اب آیت نمبر 74 میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے دلوں کی حالت بتائی ہے کہ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد کہ گائے کے ایک ٹکڑے سے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، مقتول زندہ ہوا اور قاتل کا پتہ چل گیا، یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد پھر ہوا کیا؟ ثم قست قلوبکم، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل. قاف سین واو، اس کے معنی ہوتے ہیں سخت اور ٹھوس ہونا. یہ لفظ جو ہے سختی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور بالعموم دل کی سختی، جب دل کے اندر رحم کے جذبات ختم ہو جائیں، دل جو ہے انسان کوئی سنگ دل ہو جائے تو اس وقت یہ لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. اور تمہارے دل سخت ہو گئے. قلب قلوب کی, قلوب اس کی جمع ہے, اور قلب کے لفظی معنی ہوتے ہیں حالت کا بدلنا. تو ایمان کی بجائے تمہارے دلوں میں سختی آ گئی. من بعد ذالک, اس واقعے کے بعد. فہیا, پس وہ, کل حجا, کل حجارتی, گویا کے پتھر کی طرح ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ہا جیم را بھی جو ہے وہ پتھر کو کہتے ہیں, اور پتھر جو کہ سخت ہوتا ہے. تمہارے دل ایسے ہیں جیسے کہ پتھر. کا کے معنی کیا؟ مانند. او یا اشد شدید ترین. آپ یاد رکھیے گا جب بھی اکبروں کے وزن پر جو لفظ آئیں گے نا, اس کے یہ سپر لیٹو ڈگری ہوتی ہے. جیسے ایک ہوتا ہے بیسٹ, پھر ایک ہوتا ہے جیسے گڈ, بیٹر اور بیسٹ. تو بیسٹ کے معنی دیتے ہیں, جیسے افلو, اکبرو, اکثرو, اشدو, اصغرو. تو اکبرو سب سے بڑا, اصغرو سب سے چھوٹا, اشدو سب سے زیادہ شدید, شدید ترین. تو اشدو بلکہ اس سے بھی زیادہ شدید قسوہ سختی میں. اب آپ دیکھیں کہ دلوں کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں. تو یہ واقعہ دیکھنے کے بعد دلوں میں نرمی پیدا ہونی چاہیے تھی, اللہ کی یاد میں مشغول ہونا چاہیے تھا, لیکن دلوں کی سختی نے یہ گواہی دی کہ وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے. اب آپ دیکھیں کہ پتھر جو ہے لوہے اور رانگے سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے. لوہا تو آگ سے پگھل جاتا ہے پر پتھر نہیں پگھلتا, تو پتھر ان کے دلوں سے بہتر ہے. اب اللہ تعالیٰ نے آگے پتھروں کی تین مثالیں دی ہیں. وَإِنَّا مِنَ الْحِجَارَةِ, اور بے شک پتھروں میں سے پہلی قسم کیا ہے؟ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارِ, کہ ان میں سے جو ہے وہ چشمے پھوٹ پڑتے ہیں. يَتَفَجَّرُ فَاجِمْرَا, اور اس کے معنی ہوتے ہیں وسیع پیمانے پر کسی چیز کو پھاڑنا, بہانا. صبح کے لیے, فجر کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے کہ وسیع پیمانے پر ہر طرف رات کے اندھیرے کو پھاڑ کر صبح کی روشنی جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے. تو اسی طرح سے جو ہے جب نہر پھوٹتی ہے تو وسیع پیمانے پر, تو بعض پتھر ایسے ہیں کہ ان میں سے چشمے پھوٹتے ہیں. نہر کی جمع ہے الانہار. دوسری پتھروں کی قسم کیسی ہے؟ وَإِنَّ مِنْهَا, اور بے شک ان پتھروں میں سے, لَمَا يَشَّقَّقُ, کہ جب وہ پھٹتا ہے, فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ, تو ان میں سے پانی نکلتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ شین قاف قاف, شقہ, کسی سخت چیز کا پھاڑنا اور پھٹ کر دو حصے ہونا. قرآن میں اس کا استعمال زیادہ تر آسمان, زمین, چاند, پتھر, جس میں جیسی بڑی اور سخت چیزوں کے لیے آیا ہے. اب یہاں پہ بھی کہا کہ بعض پتھر جب پھٹتے ہیں, فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ, تو اس میں سے پانی نکلتا ہے. پھر تیسری قسم, وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, اور بعض پتھر ایسے بھی ہیں کہ جب وہ پھٹتے ہیں, يَهْبِطُ هَا بَاتُوَي, اس کے معنی ہوتے ہیں گرنا, اترنا. اور آپ نے پیچھے پڑھا تھا اہبتو, کہ تم سب اترو, گیٹ آؤٹ کے معنی ہے. اب کیا ہے کہ پتھر جو ہے وہ گر پڑا ہے, کس سے؟ من خشیت اللہ, اللہ کے خوف سے. اور بعض پتھر ایسے ہیں کہ اللہ کے ڈر سے, اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. اب پتھروں کے تین اثرات یہاں پہ بتائے گئے ہیں, اور اس کے معنی یہ ہیں کہ بعض پتھر جو ہیں ان اتنی تاثیر لیتے ہیں کہ ان سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں, ان سے مخلوق فائدہ اٹھاتی ہے, پانی لیتی ہے. اور یہودیوں کے دل ایسے تھے کہ مخلوق کی تکلیف دیکھ کر بھی پگھلتے نہیں تھے. پھر دوسری قسم, ایسے پتھر کہ ان میں کم تاثر ہوتا ہے, کم نفع ہوتا ہے, تو پہلے پتھروں کی نسبت وہ جو ہے وہ کم نرم ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی ان سے پانی کچھ بہتا ہے. اور جو تیسرے قسم کے پتھر ہیں, اب ان کا جو اثر ہے ویسا نہیں جیسا کہ پہلی دو پتھروں کی قسموں کا ہے, لیکن پھر بھی ایسے پتھر ہیں کہ اللہ کے خوف سے یہ نیچے گر پڑتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے. پتھر ہیں, درخت ہیں, اور یہ جو چیزیں ہیں یہ اثرات کو جو ہے وہ قبول کرتی ہیں. جیسے ایک جو ہے وہ درخت کے تنے پر, کھجور کے تنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے. اور جب آپ کے لیے ممبر بنا دیا گیا تو آپ نے اس تنے کو چھوڑ دیا, تو وہ جو تنا تھا نا وہ رونے لگا. صحابہ نے جب اس تنے کے رونے کی آواز سنی तो जो है वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है बताया कि असल में मैंने उस पे खुतबा देना जो है वो छोड़ दिया है, तो अब वो उस गम में रो रहा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से नीचे उतरे, दरख्त को अपने साथ लगाया तो वो खामोश हो गया। इसी तरह जो है वो हजरत जाबिर फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मक्का के उस पत्थर को पहचानता हूँ जो बेसत और नबूवत से पहले मुझे सलाम किया करता था, और मैं अब भी उसको पहचानता हूँ। और बाज कहते हैं कि ये हिजरे अस्वद था। तो बहरहाल ये तो हैं ये पत्थर जिनमें असरात हैं। अब हमें भी अपने अपने दिलों का जायजा लेना चाहिए कि मेरे दिल में अल्लाह की आयात का कितना असर होता है, अल्लाह के अहकाम को जो है मैं कितना अपने ऊपर नाफिज करती हूँ। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह तुम्हारे करतूतों से बेखबर नहीं है, गाफिल नहीं है। तो जो बिगड़ा हुआ दिल होता है, वो दिल जो कि गुनाह करके सख्त हो जाता है, तो उसके अंदर नेकी और तकवा की जो फसल है ना वो उगना बंद हो जाती है। अब आप देखिए कि यहाँ पे जो है वो बनी इसराइल का रवैया बताया जा रहा है और मुसलमानों से कहा जा रहा है कि तुम क्या समझते हो कि बनी इसराइल जो है वो ईमान ले आएंगे। अफातत्माउना, क्या तुम उम्मीद रखते हो? तो ए मीम आइन के मानी है तवक्को, उम्मीद, अय्यो मिनू लकुम, कि वो ईमान लाएंगे तुम पर। वकद काना फरीकुम मिनहुम, हालांकि इनमें से एक ग्रोह ऐसा है, फरीक फाराका, एक ग्रोह ऐसा है तुम में से, यस्माउना, कि वो सुनते हैं कलाम अल्लाही अल्लाह के कलाम को, सुम्मा युहर्रिफूनहू, फिर उसको तब्दील कर देते हैं। हाराफा, इसके मानी होते हैं कि बात को असल मानी और मफहूम से फेर कर अपनी ख्वाहिश के मुताबिक दूसरे मानी पहना देना। तो वो क्या करते हैं, सुम्मा युहर्रिफूनहू, जैसे पीछे आपने पढ़ा था हित्तातुन को उन्होंने हिंतातुन कहा, मिन बादि मा अकलूहू, बाद इसके कि उन्होंने खूब उसको समझा था, वहुम यालमून, और वो जानते थे। अब यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो बनी इसराइल का रवैया बता रहे हैं कि ए मुसलमानों, क्या तुम्हें उम्मीद है कि ये ईमान ले आएंगे, हालांकि ये अल्लाह के कलाम को सुनते हैं। फिर नंबर दो, उसको तब्दील कर देते हैं। नंबर तीन, निम्बा दिमा अकालूहू, बाद इसके कि उसको समझ लेते हैं, वहुम यालमून, और वो जानते हैं। तो जानबूझकर ये अल्लाह के कलाम में तगैयुर करते हैं। अब बनी इसराइल के उलमा जो थे उन्होंने तुरात, जबूर और दूसरी किताबें जो अंबिया के जरिए उनको पहुंची थी, उन्होंने उसको जो था तब्दील कर दिया था। उम्मत मुस्लिमा को भी ये देखना चाहिए कि कहीं अल्लाह के कलाम को हमने तो नहीं बदल दिया। अब उनका एक और रवैया बताया जा रहा है कि वाइजा लकुल्लदीन आमनू, और जब वो मुलाकात करते हैं उन लोगों से जो ईमान लाए, पालू कहते हैं आमन्ना, हम ईमान लाए हैं। वाइजा खला बादुहुम इलाबादिन, और जब वो अलैदा होते हैं इनमें से बास बास से, कि अब ये क्या करते हैं कि जब आपस में एक दूसरे से अलैदगी में मिलते हैं, खला जो है इसका रूट है खा लाम वो, कालू कहते हैं अतुहद्दिसूनहुम, कि क्या तुम उनको बताते हो? तुहद्दिसूनहुम इसका रूट है हा दाल सा, और इसके मानी होते हैं जैसे किसी नई चीज का वजूद में आना, हदीस नई बात को कहते हैं, हादिसा जैसे कोई वाकया पेश आए, तो ये बात के लिए, आम बात के लिए भी आता है। अतुहद्दिसूनहुम, क्या तुम उनको वो बातें बताते हो, बिमा फताहल्लाहु अलैकुम, जो अल्लाह ने तुम पर खोली हैं, जैसे तुमने अपनी किताबों में पढ़ा है कि नबी आने वाला है उस पर कुरान नाजिल होगा, तो जो बातें तुमने अपनी किताबों में जो है वो पढ़ी हैं, तुम अल्लाह ने तुम्हें बताई हैं, तो तुम इन मुसलमानों को बता देते हो, ले युहाज्जुकुम बिही इंदा रब्बिकुम, ताकि तुम्हारे रब के पास तुम्हारे मुकाबले में इन्हें हुज्जत के तौर पर पेश करें। ले युहाज्जुकुम, हा जीम जीम, इसके मानी होते हैं कि दलील में गालिब आने के लिए एक दूसरे से झगड़ा करना। तो जब उनको ये पता चल जाएगा कि हमें पता था और हम ईमान नहीं लाए, तो फिर इस बात को अल्लाह के सामने हुज्जत के तौर पर वो पेश करेंगे। तो अब वो बनी इसराइल के लोग जो थे, अब आपस में एक दूसरे से कह रहे थे कि जो बातें हमें पता है ना वो मुसलमानों को मत बताया करो, कि हमें पता था कि हम तो रात में पढ़ चुके हैं कि नबी आने वाला है, और जो है जो लोग यहूदियों में से ईमान ले आते थे और अपने साथियों से जब अलैदगी में मिलते, تو ایمان لانے والوں کو دوسرے کہتے تھے کہ تم مسلمانوں کو تورات کی ایسی باتیں کیوں بتاتے ہو جو تمہارے اپنے خلاف ہیں؟ کیا تم چاہتے ہو کہ مسلمان کل کو اللہ کے سامنے جو ہے ہمارے خلاف حجت پیش کریں؟ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا وہ نہیں جانتے، عین لام میم، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ یعلم جانتا ہے، ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں، یسرون سین رارا چھپانے کے لیے آتا ہے، وما یعلنون عین لام نون جو ہے وہ اعلان کرنا ظاہر کرنا، تو اللہ کو ان کی پوشیدہ اور اعلانیہ ساری باتیں پتا ہیں. پھر ان میں جو ہے وہ ایک گروہ تھا، وہ کن کا گروہ تھا؟ یہ مشرکین تھے. وَمِنْهُمْ اُمِّيُّونَ، اور ان میں ایک گروہ ہے امیین کا. حمزہ میم میم، ام کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جیسے ماں کے لیے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں کہ جو ہے ایسا شخص جو کہ تحریر، کتابت یا مدرسے کی تعلیم سے ناواقف ہو، اور امی واحد ہے، امیون جمع ہے، اور اس سے مراد ہے یہودیوں کے ان پڑھ لوگ. اور ان میں سے ایک گروہ تھا لا یعلمون الکتابا، کہ وہ کتاب کو نہیں جانتے، الا امانیہ مگر ان کی خواہشات. امانیہ اس کا روٹ ہے میم نون یا، اس کا واحد ہے امنیتن، جھوٹی اور باطل آرزو کو کہتے ہیں، ایسی آرزو یا خواہش جس کی کوئی مضبوط بنیاد نہ ہو. جیسے بہت سی تمنائیں نہیں ہوتی، تو اب علم تو ان کے پاس کوئی نہیں ہے لیکن خواہشات ہیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور محض یہ جو ہے نا گمان پر بیٹھے ہیں، یظنون بس گمان کرتے چلے جاتے ہیں. اب ان کا حال یہ تھا، علم حاصل نہیں کرتے تھے، انہیں نہیں پتا تھا کہ کتاب کے اندر کیا دین کے اصول ہیں، بس اپنی خواہشات کے مطابق جو تھے وہ جی رہے تھے اور اپنی خواہشات کو دین سمجھا ہوا تھا. جیسے آج کے مسلمانوں کی اکثریت جو ہے صرف اگر قرآن کی تلاوت کرتی ہے اور قرآن کو ترجمہ تفسیر سے نہیں پڑھتی تو وہ بھی خواہشات پر جی رہی ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ بس جو ہے خالی اس کو پڑھ کر جو ہے نا ہم بخشے جائیں گے خالی اس کی تلاوت سے. گو کہ تلاوت کا بھی سوال ہے، تلاوت کا بھی ثواب ہے، لیکن اصل بات کیا ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد پھر اس پہ عمل بھی کیا جائے. تو خواہشات پر اور بے بنیاد آرزوؤں پر جینے کی بجائے دین کو سمجھنا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے، ورنہ پھر مسلمانوں کا حال جو ہے وہ انہی جو ہے وہ یہودیوں کی طرح ہوگا. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، پس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے. وَيْلٌ جو ہے یہ جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے، اور ویسے یہ ڈانٹ کے لیے اور جو ہے وہ ناراضگی کے لیے یہ جملہ استعمال ہوتا ہے. پس جو ہے تباہی ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ کہ وہ لکھتے ہیں کتاب کو، بے ایدیہم اپنے ہاتھوں سے. تو یہاں پر اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ اپنے ہاتھوں سے کیسا نامہ اعمال جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں. ثم یقولون، پھر وہ کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے. تو اپنی مرضی سے جو ہے وہ اپنا نامہ اعمال تیار کر رہے ہیں، یا پھر اس کے اصل معنی یہاں پہ یہ ہیں کہ وہ کلام الہی کو اپنی خواہشات کے مطابق جیسے ڈھالتے ہیں، جیسے کہ اپنے ہاتھوں سے لکھنا، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. جیسے بعض لوگ اپنی باتوں کو کہیں کہ یہ قرآن میں ہے، یہ حدیث میں ہے، ایسا وہ کیوں کرتے ہیں؟ لیشترو بہی سمنن قلیلا، تاکہ اس کے بدلے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں. اور تھوڑا سا فائدہ کیا ہے کہ دنیا کا مال، اور اگر کسی کو پوری دنیا بھی مل جائے تو وہ کیا ہے، سمنن قلیلا، بہت تھوڑی ہے. فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، پس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا. وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے جو ہے وہ تباہی کا ذریعہ ہے. اب یہاں پر اللہ رب العزت جو ہے یہودیوں کی اور ان کے علماء کی بھی اور ان کے عوام کی بھی جو ہے وہ حالت بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں اللہ کی جو کتاب ہے اس پر عمل کرنے کی بجائے جو ہے اللہ کی کتاب کو چھپاتے ہیں، یہ تورات کا علم نہیں رکھتے، اس پہ غور و فکر نہیں کرتے، اور دنیا کے فائدوں کی خاطر جو ہے وہ اللہ کی شریعت، اللہ کے دین کو بیچتے ہیں. اب یہاں پہ امت مسلمہ کو جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آج امت مسلمہ उलमा भी और अवाम भी कुरान और सुन्नत को छुपाते हैं और जो है वो अल्लाह की आयात को जो है वो दुनिया की खातिर जो है वो बेचते हैं। तो यहाँ पे जो तबाही की बात है सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं, अगर आज मुसलमान इस बीमारी में मुब्तला है तो इनके लिए भी यही जो है वो सजा है। फिर उनका एक और अकीदा था बनी इसराइल का, वो कहते थे कि हम अल्लाह के इतने पसंदीदा हैं, चाहते हैं कि हमें जहन्नुम की आग छुएगी नहीं, अगर छुएगी तो बस गिनती के चंद दिन। वकालू, और वो कहते हैं लन तमस्सन नारु इल्ला अय्यामम मादूदा, हरगिज नहीं छुएगी, मीम सीन सीन, और इसके मानी होता है छूना, एक चीज का दूसरे को मस करना, तो नहीं छुएगी हमको अन्नारु आग इल्ला मगर अय्यामन यौम से है वाहिद और अय्याम जमा मादूदा आयन दाल दाल अद्दा या उद्दू गिनना। तो गिन अगर अव्वल तो ये कि हम जहन्नुम में जाएंगे नहीं, हमें कोई नहीं जहन्नुम की सजा मिलेगी, जहन्नुम की आग जो है हम उससे बच कर रहेंगे, और अगर मिल भी गई सजा जहन्नुम की आग में हमें डाला भी गया तो बस गिनती के सिर्फ चंद दिन। कुल कह दीजिए अत्तखस्तुम इंदल्लाही आहदन, कि क्या तुमने जो है अल्लाह से कोई अहद ले लिया है, फलन युखलिफल्लाहु अहदहु, और अल्लाह जो है उस अहद की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। हम तकूलूना अल्लाह मा ला तालमून, या तुम अल्लाह के जिम्मे वो बातें लगाते हो, अल्लाह का नाम लेकर वो बातें कहते हो जिनका तुम्हें इल्म नहीं है। जैसे आज उम्मत मुस्लिमा ये कहती है, बाज लोग ये कहते हैं कि हम जो है मुहम्मदी हैं, हमने कलमा पढ़ा हुआ है और हम जो चाहे कर लें जो है वो हम जो है वो बख्शे हुए हैं, हम जन्नत में जाएंगे। तो असल बात यहाँ पे ये बात बताई जा रही है कि इस तरह की जो बातें हैं कि अगर कोई शख्स अमल नहीं करता और बस इसी पर तकिया करके बैठा हुआ है कि शिफात हो जाएगी या कलमा की वजह से मैं जन्नत में चला जाऊंगा, तो उसको भी सोचना चाहिए, क्योंकि बनी इसराइल ये कहते थे कि हम अंबिया की औलाद हैं तो इसलिए हम जहन्नुम में जाएंगे नहीं, और अगर डाला भी गया तो गिनती के चंद दिन। और सोचें कि यानी चंद दिन जो है अल्लाह का अजाब इतना सख्त है कि कुछ देर भी तसव्वुर नहीं किया जा सकता, और चंद दिन तो बड़ी बात है। भला मन कसबा सैयात वाहातत भी खतियात हो, हाँ क्यों नहीं जिस किसी ने कमाई की सैयातन बुराई की, वाहातत भी खतियात हो और घेर लिया उसको उसकी खताओं ने। सैयातन जो लफ्ज है इसका रूट है सीन वो हमजा और इसके मानी है शिर्क। अहातत हौत से है, जैसे अहाता घेराव के मानी में आता है, तो जो कोई शिर्क करेगा तो इहाता कर लेगा, घेर लेगा उसको, खतियातो उसका कुफ्र। मुफस्सरीन कहते हैं यहाँ पे खतियातो जो है ये कुफ्र के मानी में आया है। फौलाइका असहाबुन नार, बेशक वो लोग आग वाले हैं, हुम फीहा खालिदून, और वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। तो आप देख लें कि शिर्क करने वाले, कुफ्र करने वाले, अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं कि उनके गुनाह जो है उनको हर तरफ से घेर लेंगे। जैसे आंधी तूफान किसी को घेर लेना, तो इनके गुनाह आंधी तूफान बनकर इनको हर तरफ से घेर लेंगे। और ये जहन्नुम के साथी हैं, अन्नार यहाँ पे जहन्नुम का नाम है, हुम फीहा खालिदून, और उसमें हमेशा रहेंगे। अब यहाँ पे दूसरा किरदार बताया जा रहा है, वल्लज़ीन आमनु, रहे वो लोग जो ईमान लाए, वह अमलु सवालेहात, और अमले सवाले किए। याद रखे ईमान और अमले सवाले ये जन्नत में जाने की जो है वो दो शराइत हैं। तो आमनु जो है इस सिलसिले में मुफस्सरीन ये कहते हैं कि आमनु के मानी है ईमान लाना, कि ऐसा अमल जो कि अल्लाह की रजा के लिए किया जाए, वो अमलु सवालेहात, इसके मानी है कि सुन्नत के मुताबिक हो, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक जो अमल किया जाए वो है अमले सवाले। तो जो जो शख्स इन दो शर्तों को पूरा करेगा, उलाइका असहाबुल जन्ना, यही लोग जन्नत वाले हैं, हुम फीहा खालिदून, और वो उसमें हमेशा हमेशा रहने वाले हैं। तो जन्नत में जाने के लिए ईमान और अमले सवाले जरूरी है, कौल के साथ साथ अमल भी, और कौल और अमल ऐसा जो अल्लाह की रजा के लिए और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हो। अब आप देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तौहीद की दावत देने के बाद अब जो है बताया कि बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया था, उससे पुख्ता वादा लिया था कि वो तौहीद परस्त भी बनेंगे और हुकूकुल इबाद भी अदा करेंगे। और ये बातें आज मुसलमानों के लिए भी हैं। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ा बनी इसराइल, और जब हमने पक्का वादा लिया बनी इसराइल से, मीसाक वो साका और पक्के वादे को कहते हैं। मीसाक जो है ना, ये रस्सी के लिए भी इस्तेमाल होता है, जंजीर के लिए भी, जिससे किसी चीज को बांधा जाए। तो याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद से अल्लाह ताला ने पक्का वादा लिया था। पहली बात क्या थी, ला ताबुदून इल्लल्लाह, कि नहीं तुम इबादत करोगे मगर अल्लाह की। ताबुदून, इसका रूट क्या है? आप लिखिए सब लोग, इसका रूट बताइए। ऐन बादाल, और इसके अंदर तीन बातें पाई जाती हैं, पूजा परस्तिश भी, फिर उसके बाद जो है वो बंदगी, और तीसरे मानी है कि नौकरी। तो उनसे ये वादा लिया गया था कि वो लोग जो है वो एक अल्लाह की बंदगी करेंगे, इल्लल्लाह मगर अल्लाह की। तो पहली बात क्या थी, तौहीद परस्त। फिर इंसानों के जो हुकूक बताए गए, तो उसमें सरे फहरिस्त जो है वालदैन का जिक्र है, वबिल वालिदैनि एहसाना, और वो वालदैन के साथ जो है वो एहसान का रवैया जो है वो इख्तियार करेंगे। अब आप देखें कि यहाँ पे एहसान का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया गया है, और एहसान के मानी है कि कोई शख्स जो है जब अल्लाह की बंदगी करे, तो अल्लाह की बंदगी में अल्लाह ताला ने ये कहा कि वालदैन के साथ भी हुस्ने सुलूक करे। और हुस्न जो है ये ब्यूटी को कहते हैं, जाहरी तौर पर भी बातनी तौर पे भी। तो वालदैन का अदब, ताजीम, अतात, रजाजुई, खिदमत, सब चीजें इसके अंदर जो है वो आती हैं। तो वालदैन के साथ जो है वो हुस्ने सुलूक करे, उनकी अतात करे, उनकी माली और जिस्मानी दोनों तरह की खिदमत करे, उनका एहतराम, उनसे दिल से मोहब्बत, और उनके हक में दुआए खैर करे। अब आप देखिए कि बाज लोग जो हैं वो वालदेन को पैसे देते हैं और समझते हैं कि हमने एहसान किया, और बाज लोग ये कहते हैं कि खिदमत तो कर रहे हैं लेकिन साथ साथ जो है गाली गलौज करते हैं, या उनकी इज्जत नहीं करते, या डांटते हैं, या ये कि उनका रवैया जो है बड़ा तलख होता है, सख्त किस्म का होता है। तो याद रखें के वालदेन से हुस्ने सुलूक के बारे में तकरीर करना बहुत आसान है, मगर अमलन वालदेन की खिदमत करना, इनसे नेक बर्ताव करना इतना आसान नहीं है। लेकिन मुश्किल नहीं है उन लोगों के लिए जो अल्लाह पर गहरा और मजबूत ईमान रखते हैं। बस सब्र और बर्दाश्त चाहिए, और जो जन्नत चाहते हैं तो उनके अमलों से जो है वो इखलास की खुशबू महकती है। अल्लाह की दायमी अतात की खातिर फिर वो वालदेन से हुस्ने सुलूक करते हैं, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वालदैन के बारे में फरमाया कि ये तुम्हारी या तो जन्नत है या जहन्नुम है, और दोनों के साथ उसने सलूक करना। वज़िल कुर्बा, और रिश्तेदारों के साथ, और रिश्तेदारों के साथ जो है कुर्ब कराबतदारी, तो रिश्तेदारों के साथ भी उसने सलूक किया जाए। फिर तीसरी बात है वल यतामा, और यतीमों के साथ। और यतामा जो है आपको पता ही है कि वो नाबालिग लड़का या लड़की जिसका बाप मर गया हो। अब आप देखें कि इस्लाम जो है सोशल सर्विसेज जो है इसकी जो है वो तरगीब दिलाता है। लोग कहते हैं कि आज मगरिब में आकर हमें पता चलता है कि सोशल सर्विसेज के लिए बहुत काम हो रहा है, लेकिन आप देखें कि यतीमों का, जिनका कोई नहीं उनका अल्लाह है, और बार बार कुरान में आता है कि इनके साथ हुस्ने सलूक किया जाए। वल मसाकीनी, और मसाकीन के साथ। सीन काफ नून, वो लोग जिनका बहुत मुश्किल गुजारा होता है, जो रुके हुए हैं, थमे हुए हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि माल आ रहा है, बल्कि क्या है कि एक जगह पर उनके हालात रुके हुए हैं, तो उनके साथ भी हुस्ने सुलूक करो। अब इसके साथ ही चार तरह के हुकूकुल इबाद का जिक्र करके अल्लाह ताला ने आगे बड़ी अहम बात कही, वकूलु लिन्नासि हुस्ना, और लोगों से अच्छी बात करो। मुफस्सरीन कहते हैं कि यहां पर जो है ये बात बताई जा रही है कि अच्छा सलूक तो करना ही है, और कभी ऐसा होता है कि जो है वो पैसे नहीं है कि, या फिर जिस्म से उनकी खिदमत नहीं कर सकते, उनको माल नहीं दे सकते, तो कहा कि बात जब करना तो उनसे शरीफाना अंदाज में करना। और जब आप पैसे दे रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, अब ये ना हो कि दिल भरा हुआ है, दिल में गुस्सा है, नाराजगी है, तो वालदेन है, रिश्तेदार है, यतीम है या मिस्कीन है, इनकी गलतियों और कोताहियों से दरगुजर करना है, और अगर दिल में कोई नाराजगी है तो उसको जब्त करना है। जब तक कोई किसी शख्स का इखलाक इतने आला दर्जे का ना हो तो वो जो है वो हुकूकुल इबाद अता नहीं कर सकता। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बच्चे वालदैन पर पैसे खर्च करते हैं या ये बाकी रिश्तेदारों पर, साथ ही कहते हैं कि बस ये तो जी हमारे गल पड़ गए हैं और पता नहीं ये बूढ़े कब मरेंगे, कब जान छूटेगी, या जो है कभी शोहर का साथ बीवी नहीं देती, कभी बीवी का साथ शोहर नहीं देता, और वालदैन को जो है बोझ समझा जाता है या रिश्तेदारों को, क्योंकि वो मजबूर होते हैं, बेबस होते हैं और नागवारी का रवैया अख्तियार किया जाता है, तुच्छ कलामी होती है। अब यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि हुस्ने सुलूक भी करना है लेकिन तलख कलामी नहीं करनी, उनकी दिल आजारी नहीं करनी, उनकी तौहीन नहीं करनी। हुस्ने सुलूक करने के साथ साथ जब भी बात करनी है तो अच्छे अंदाज में करनी है। याद रखें कि यहाँ पे क्या कहा, वकूलु लिन्नासी हुस्ना। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को जब फिरौन के दरबार में भेजा था तो क्या कहा था, कूला लहू कौलल लय्यिना। कलाम करने वाला मूसा अलैहिस्सलाम से अफजल नहीं हो सकता, मुखातिब कितना ही बुरा क्यों ना हो पर फिरौन से ज्यादा बुरा नहीं हो सकता। लेकिन पैगंबरों को, इनको कहा कि फिरौन से नरमी से बात करना। तो आप सोच लें कि यहाँ पे वकूल लिन्नासी हुस्ना जो है इसका हुक्म दिया जा रहा है, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान बद जबान, गाली गलोच देने वाला और झगड़ालू नहीं होता। और आपने ये भी फरमाया, छोटी से छोटी नेकी को भी हकीर ना जानो, चाहे नेकी यही हो कि तुम अपने भाई के साथ मुस्कुराते चेहरे से मिलो, मुस्कुराना भी सदका है। तो लोगों से भले तरीके से बात करो, जबान से और जो बातें की जाएं ऐसे जैसे कि फूल झड़ते हों। बाज लोग बड़ी नेकियां करते हैं लेकिन बड़े मुंह फट होते हैं, बड़े तुर्श मिजाज, सख्त मिजाज, और सारी खिदमत पर जो जुमले बोलते हैं ना पानी फेर देते हैं। वाकीमुस सलाता व आतु ज़काता, और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। अब आप देखें कि यहाँ पे इबादात में से सिर्फ दो का जिक्र है, और इस सिलसिले में मैं आपको एक हदीस सुनाती हूँ कि हजरत तलहा बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ने फरमाते हैं कि मैंने जो है एक ख्वाब देखा, मैंने सुबह के वक्त लोगों को ख्वाब सुनाया, और ख्वाब मैंने ये देखा कि एक कबीले के दो शख्स एक साथ मुसलमान हुए, इनमें से एक जिहाद फी सबीलिल्लाह में शहीद हो गए और दूसरे 1 साल के बाद फौत हुए। हजरत तलहा रजी अल्लाह ने ख्वाब में देखा कि वो साहिब जिनका 1 साल बाद इंतकाल हुआ वो शहीद से पहले जन्नत में दाखिल हो गए। हजरत तलहा रजी अल्लाह ने कहते हैं, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि शहीद का रुतबा तो इतना बुलंद, तो जन्नत में उसे पहले जाना चाहिए था, और जो है वो शहीद से पहले जो है जो 1 साल बाद में फौत हुआ वो कैसे जन्नत में पहले चला गया। तो कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो आपने फरमाया कि इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं, बताओ क्या बाद वाले शख्स ने 1 साल इबादत नहीं की, ज्यादा इबादत नहीं की, इसने एक रमजान के रोजे नहीं रखे, इसने 1 साल की नमाजों के इतने सजदे नहीं किए जैसे साल भर की फर्ज नमाजों की जैसे 6,000, और इतनी इतनी रखते ज्यादा नहीं पड़ी। सब ने अर्ज किया, जी हाँ ऐ अल्लाह के रसूल। तो आपने फरमाया, फिर इन दोनों के दरमियान जमीन और आसमान का फर्क हो गया। तो इस हदीस से क्या बात पता चलती है कि अगर कोई शख्स जो है वो नमाजें पढ़ता है, सदका खैरात करता है, रोजे रखता है, तो ऐसा शख्स जो है अपनी इबादत की वजह से जो है वो फिर जन्नत की जो है वो तैयारी करता है, और जो है वो नमाज के बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से डरो नमाज के बारे में, अल्लाह से डरो नमाज के बारे में, अल्लाह से डरो, 3 दफा आपने ये बात कही। तो नमाज जो फर्ज है उसको हर हाल में अदा करना चाहिए, घर में दावत हो या दावत पे जाएं, दुल्हन बनकर बैठे हुए हैं या कहीं मॉल में शॉपिंग कर रहे हैं या कहीं सफर कर रहे हैं। और आपको जो है एक जो है वो वीडियो क्लिप जो मेल किया गया है आप उसको भी जरूर देखें, और देखें कि नमाज जो है वो कैसे पढ़नी है। और इसी तरह फिर फर्ज ज़कात जो है, जो माल में से हम पे फर्ज है उसको खुश दिली से अदा करना चाहिए। सुम्मा तवल्लई तुम इल्ला कलीला मिनकुम वान तुम मोरिदून, फिर इसके बाद तुम फिर गए मगर थोड़े आदमियों के सिवा, यानी ज्यादा लोग जो थे वो सारे इस वादे से फिर गए, थोड़े लोग थे जो कायम रहे, वह अंत मोरेदून, और तुम अब तक फिरे हुए हो। मोरेदून का लफ्ज जो है ऐन रादवात, ये अर्ज चौड़ाई के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कोई चौड़ाई पर अपना रुख फेर ले। अब फिर जो है बनी इसराइल की तारीख का एक और वाकया बताया जा रहा है कि उनसे ये कहा गया था कि वो आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो हुस्ने सुलूक करेंगे, क्योंकि मदीना में यहूदियों के 3 कबीले रहते थे, बनू कैनुका, बनू कुरैदा और उसके साथ जो है वो बनू नदीर। तो कहा वाइज अखस नामी सा का कुम, और जब तुमसे हमने मजबूत वादा लिया था, ला तस्फिकूना दिमा अकुम, कि तुम जो है वो आपस में एक दूसरे का खून नहीं बहाओगे। आपने यहाँ पे पढ़ा तस्फिकूना, आपने पीछे सूरत अलबकरा की आयत 30 में पढ़ा यस्फिकू, और सीन फा काफ के मानी होते हैं खून या पानी का बहाना। दिमा कुम, ये भी आप पढ़ चुकी हैं, दाल मीम वाओ, और दम जो है खून को कहते हैं, बिरयानी के दम की बात नहीं कर रही, दाल मीम वाओ खून को कहते हैं और दिमा इसकी जमा है, कि तुम आपस में यहूदी एक दूसरे का खून नहीं बहाएंगे। नंबर दो, वला तुखरिजू ना अनफुसकुम मिन दियारिकुम, और तुम अपने भाइयों को, अनफुसकुम अपने नफ्स को, मुराद है अपने भाई, तुम अपने भाइयों को अपने घरों से नहीं निकालोगे, उनके घरों से नहीं निकालोगे। तो अनफुसकुम नफ्स की जमा है, और ये जो दियार है इसका रूट है दाल वौरा, वाहिद है दार, दियार इसकी जमा है, और घर और मकान के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। जैसे दार कहते हैं जैसे एक हवेली और उसमें कई घर हो, तो तुम जो यहूदी हैं अपने बाकी भाइयों को जो है, जो कबीले के दूसरे लोग हैं, उनको घरों से नहीं निकालोगे। ये दो वादे जब तुमसे लिए गए थे, सुम्मा अकरर तुम, फिर तुमने इकरार किया, वान तुम तशोदून, और तुम इसके गवाह हो। फिर इसके बाद जो है एक और भी तुम्हें हुक्म दिया गया था, वो क्या था कि आपस में कत्ल नहीं करोगे ना, तो सुम्मा अंतुम हाउलाई, फिर तुम यही लोग हो, तक्तुलूना अनफुसकुम, कि तुम आपस में एक दूसरे को कत्ल करते हो, व तुखरिजूना फरीकम मिन दियारहिम, और अपनी बरादरी के लोगों को, यहूदियों को जो है वो उनके घरों से निकाल देते हो। और कैसी अजीब बात है, तजाहरूना, कि तुम जो है वो जत्थाबंदी करते हो। अब यहाँ पे तजाहरूना का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, जोएहा रा जो है ये पीठ को कहते हैं, पिछला बैरूनी हिस्सा, इसकी जमा जहूर है, तो पीठ के ऊपर गर्दन तक का जो पिछला बैरूनी हिस्सा है ना, इसको जहर कहते हैं। और फिर जब यहाँ पे तजाहरून का लफ्ज इस्तेमाल हो गया, ये ऐसा ग्रामर का यहाँ पे वर्ब इस्तेमाल हुआ है जिसके मानी है कि फोकियत हासिल करने के लिए एक दूसरे के सामने आना, चढ़ाई करना। तो अब तुम जो है आगे अला की प्रेपोजिशन भी आ गई, अब तुम क्या करते हो, एक दूसरे के खिलाफ जत्थाबंदी करते हो, बिल इस्मी गुनाह के साथ, वल उद्वान और ज्यादती के साथ। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपस में तुम अपने जो साथी हैं उनको घरों से बाहर निकाल देते हो, और जुल्म और ज्यादती के साथ इनके खिलाफ चढ़ चढ़ कर आते हो। वहीं यातूकुम उसारा तुफादूहुम, और अगर वो तुम्हारे पास आते हैं कैदी बनकर, उसारा का जो लफ्ज है ये अलिफ सीन रा इसका रूट है, और इसके मानी है किसी को रस्सी से बांधना, जैसे असीर कैदी को कहते हैं ना, जंगी कैदी को, तो असरा उसारा इसकी जमा है। तो तुम क्या करते हो कि जब वो जंगी कैदी बनकर तुम्हारे ही कबीले के लोग तुम्हारे पास आते हैं, तुफादूहुम, तो तुम जो है फिर उनको फिदिया देकर छुड़ाते हो, तुफादुम फादाल, या जैसे कुछ पैसे देकर छुड़ाते हो। वह हुआ मुहर्रमुन अलैकुम, और तुम पर हराम था, इखराजुहुम, उनको उनके घरों से निकालना। अब यहां पर आप ये बात याद रखें कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के लोगों से ये वादा लिया था कि वो ये जो तीनों कबीले हैं ये आपस में ना एक दूसरे को कत्ल करेंगे, ना घरों से निकालेंगे, ना गुलाम बनाएंगे। लेकिन हुआ क्या कि इन्होंने जो है इस अहद का ख्याल ना रखा। तो मदीना में दो और कबीले थे, औस और खजरज। तो औस और खजरज के जो लोग थे, इनके साथ जो थे ये बनू कैनका, बनू नदीर का जो था वो एक एग्रीमेंट था खजरज के साथ, और बनू कुरैजा के साथ औस का। जब लड़ाई छिड़ती थी तो ये अपने अपने हलीफ का साथ देते थे, और जब जो है फिर क्या करते कि अपने ही साथियों को कत्ल करते, अगर वो कैदी बनकर आते तो पैसे देकर छुड़ाते। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि तुम्हें तो ये कहा गया था कि तुम जो है उन्हें कत्ल ही नहीं करोगे, तो तुम क्या करते हो تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض, کہ تم کتاب کے بعض حصوں پر ایمان لاتے ہو اور بعض کو چھوڑ دیتے ہو. تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ پوری تورات پر ایمان لاتے. تو وہ کیا کرتے تھے, کچھ پر ایمان لاتے تھے اور کچھ کو چھوڑ دیتے تھے. ہمیں بھی اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ آج کا مسلمان جو ہے کیا وہ پورے قرآن پر ایمان لاتا ہے, کہ یا جو میٹھا لگتا ہے, اچھا لگتا ہے, آسان لگتا ہے وہ لے لیتا ہے, باقیوں کو چھوڑ دیتا ہے. فما جزاؤ, بس اس کا کیا بدلہ ہے, من یفعل ذلک, جو ایسا کرے کہ کچھ حصے پہ ایمان لائے اور کچھ کو چھوڑ دے. منکم, تم میں سے, الا خزیون, مگر رسوائی, فی الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی میں, کہ تم میں سے جو کوئی ایسا کرے کہ کچھ حصوں پر ایمان لائے اور کچھ کو چھوڑ دے, تو دنیا کی زندگی میں ان کے لیے جو ہے وہ خزیون ہے, رسوائی ہے, ذلیل ہونا ہے. یوم القیامتی, اور قیامت کے دن, یردون الی اشد العذاب, کہ انہیں دردناک عذاب کی طرف, شدید ترین عذاب کی طرف انہیں دھکیل دیا جائے گا. یردونا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ وہ جانا نہیں چاہیں گے لیکن ان کو پھیر دیا جائے گا. اور عذاب کیسا ہوگا, اشد, یہاں پہ اشدو ہی تھا, الہ کی وجہ سے اشدی بن گیا, سخت عذاب. وما اللہ بغافل عما تعملون, اور اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو, کہ جو ہے وہ تمہارے رویے میں جو دو رنگی ہے اللہ خوب جانتا ہے. اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی ہے. کتنا افسوسناک سودا ہے, کتنا خسارے کا سودا ہے کہ آخرت کے بدلے دنیا کو انہوں نے خرید لیا. یہاں پہ با جو ہے نا, آخرت سے پہلے یہ بدلے کے معنی میں آیا ہے. فلا یخفف عنہم العذاب, پس نہیں کم کیا جائے گا ان سے عذاب. خافافا, اس کے معنی ہوتا ہے ہلکا کرنا, کم کرنا. تو قیامت کے دن عذاب ان سے کم نہیں کیا جائے گا. ولا هم ينصرون, اور ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی. پھر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو بتانے کے لیے, سمجھانے کے لیے اپنے کئی نبی بھیجے, موسیٰ علیہ السلام کے بعد لگاتار رسول بھیجے, اور یہ رسالت کا سلسلہ عیسیٰ علیہ السلام پر آ کر جو ہے وہ ختم ہو گیا. ان میں سے چند انبیاء کے نام قرآن میں ہیں, جیسے حضرت ہارون, ذوالکفل, الیاس, الیس, داؤد, سلیمان, لقمان, عزیر, یونس, زکریا, یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام. اب یہاں پہ اسی کا ذکر ہے کہ ذرا سوچو تو صحیح, اتنے نبی بھیجے اور تم نے پھر کیا کیا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ, اور اس کے بعد قَفَّيْنَا مَسَلْسَلْ بِالرُّسُلِ, رسول بھیجے, رسول واحد ہے, رسول اس کی جمع ہے. اور قَفَّيْنَا, اس کا روٹ ہے قاف فا واو, ریڑھ کی ہڈی کے موروں کو کہتے ہیں. ریڑھ کی ہڈی کے مورے ایک کے ساتھ دوسرا جڑا ہوا ہوتا ہے. معنی یہ ہے کہ ایک کے بعد دوسرا نبی جو ہے وہ بھیجا مسلسل. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ, اور ہم نے دیا موسیٰ علیہ السلام, اور ہم نے عطا کیا عیسیٰ علیہ السلام کو, جو مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے, البینات, روشن نشانیاں. اور بینات سے مراد وہ معجزات ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے. وَأَيَّدْنَاهُ, اور ہم نے ان کی مدد کی, بِرُوحِ الْقُدُسِ, روح القدس سے. اور مفسرین کہتے ہیں کہ روح القدس سے مراد ہے علم وحی بھی اور جبرائیل علیہ السلام بھی. افکلما جاءکم رسول, جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول آیا, بما لا تهوی انفسکم, جن کو جو ہے وہ پسند نہیں کرتے تھے ان کے نفس, بما لا, جو نہیں تھے تهوی چاہتے, ہا وو یا, اس کے معنی ہوتے ہیں بلندی سے نیچے گرنا. اور جیسے جو ہے وہ اسی طرح پھر یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے خواہشات کے لیے, کیونکہ خواہشات پر اگر انسان عمل کرے تو ایسا ہی جیسے بلندی سے نیچے گرے. تو جب بھی کوئی رسول جو ہے ان کی خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر آیا, تو کیا کیا, استکبرتم, تم نے اسے جو ہے وہ جھٹلا دیا, تم نے کبر کیا. اور کبر کی تعریف جو ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق آپ یاد کر لیں, بتر الحق وغمت الناس, اللہ کے حق کے بندگی کو ادا نہ کرنا और उसके बंदों को हकीर समझना। तो तुमने ऐसे किबर किया जैसे आपने पीछे पढ़ा था इबलीस ने किबर किया। तो जो शख्स पैगंबर की जो लाइवी हदायत है जो अल्लाह देता है, जैसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान दिया गया, अब जो शख्स कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालता नहीं है तो इसका ये मतलब है कि उसने किब्र किया। फरीकन कज़्ज़बतुम, किब्र कैसे किया जाता है? बस एक ग्रोह ने झुटलाया, एक ग्रोह ने क्या किया कि वो जो अंबिया आए थे उनको झुटला दिया, वो किताबें जो लाए थे उनको झुटला दिया। वह फरीकन तक्तलून, और जो दूसरा ग्रोह था नबियों का उसको तुमने कत्ल कर दिया, किसी को तो माना नहीं और किसी को जो है वो वैसे ही खत्म कर दिया। और इनकी तारीख जो है बड़ी दर्दनाक है कि ये नबियों को जो थे वो कत्ल करते थे। साथ ही ये कहते थे वकालू कुलूबुना गुल्फ के हमारे दिल जो है गिलाफों में है। गैन लाम फा इसके मानी होते हैं जैसे किसी चीज का बंद होना, जैसे तकिया जो होता है गिलाफ के अंदर होता है ना, या क्विल्ट जो है उसके ऊपर आप कवर डाल देती हैं तो अंदर वो चीज छुप जाती है ना। तो कहते थे कि हमारे दिल जो है ना ये महफूज हैं, कि हम अपने अकीदे में इतने पक्के हैं कि आप जो कुछ कहें हम अपने अकीदे से, जो हमारे बाप दादा का अकीदा है, जो हमारी ख्वाहिशात का अकीदा है, हम उससे नहीं निकलने वाले, कोई चीज हम पर असर नहीं करती। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं ये बात नहीं है कि इनके दिल अपने अकीदे पुख्ता हैं पक्के हैं, असल बात क्या है, बल्लअनहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम, बस अल्लाह ने लानत की है इन पर इनके कुफर की वजह से। और लाना लाम आयन नून के मानी होते हैं किसी को रहमत से महरूम कर देना। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनके कुफर की वजह से जो है वो इनके ऊपर लानत की है, इनको रहमत से महरूम कर दिया है। फकलीलम्मा युमिनून, तो इसलिए तुम कम ही ईमान लाते हो, वो कम ही ईमान लाते हैं। वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाही, और अब जो एक किताब अल्लाह की तरफ से इनके पास आई है, कौन सी? कुरान मजीद। मुसद्दिकुल लिमा हुम, वो तस्दीक करती है उसकी जो तुम्हारे पास है। वकानु मिन कब्लु यस्तफ्तहूना, और इससे पहले यस्तफ्तहूना वो फतह की दुआएं मांगा करते थे। क्या दुआ मांगते थे और किसके लिए मांगते थे? अल्लज़ीना कफ़रू, उन लोगों पर जो काफिर थे। तो यहूदी जो थे रसूल अल्लाह के आने से पहले जो है वो दुआएं मांगा करते थे कि जैसे औस और खजरत के लोगों से उनकी लड़ाई होती थी ना, तो वो जीत जाते थे औस और खजरत और ये हारते थे, तो ये दुआ करते थे कि हमारे दरमियान एक रसूल आने वाला है, जब वो आएंगे उनके साथ मिलकर हम जंग करेंगे तो तुम्हें शिकस्त दे देंगे। यहाँ पे उसी बात का जिक्र है कि रसूल अल्लाह की आमद से पहले वो खुद कुफार के मुकाबले में फतह और नुसरत की दुआएं मांगा करते थे। फलम्मा जाहुम, जब वो आ गए प्यारे रसूल आ गए, मा अरफू, जिसको उन्होंने पहचान भी लिया, कफरू भी, तो इनका कुफर किया, फिर वो इन पे ईमान ना लाए। फलानतुल्लाहि अलल काफिरीन, बस अल्लाह की लानत हो इन काफिरों पर। दे समा, कितना बुरा है, इस तरह वही जो इन्होंने जो है वो सौदा किया है, अनफुसहुम अपने नफ्सों के साथ। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं कैसा बुरा जरिया है जिससे ये अपने नफ्स की तसल्ली चाहते हैं। क्या करते हैं? अन यकफरू, कि ये कुफर करते हैं, बिमा अनजल अल्लाह, जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया है। अच्छा, कुफर करने की वजह क्या है? इसको आप सर्कल कर लें, बगयन, सरकशी, जिद। अन युनज्जिल अल्लाह मिन फज़लिही, के अल्लाह जो है नाजिल करता है अपने फजल से, अला मन यशाउ मिन इबादिही, अपने बंदों में से जिसको चाहता है। अब यहां पर जो है ये बात बताई जा रही है कि ये लोग जो हैं हसद और जिद की वजह से अल्लाह की नाजिल करदा हदायत का इनकार करते हैं कि अल्लाह ताला ने नबी को बनी इसराइल में क्यों नहीं भेजा, बनी इस्माइल में क्यों भेज दिया। और अल्लाह ताला कहते हैं हालांकि अल्लाह का मामला क्या होता है कि अय युनज्जिल अल्लाह मिन फज़लिही, कि वो अपने फजल को नाजिल करता है, और फजल से मुराद वही और रिसालत है कि जिसको चाहे रसूल बनाए और जिसको चाहे किताब दे दे, जैसे प्यारे रसूल को कुरान दिया। अला मन यशाउ, जिसको वो चाहे, मिन इबादिही, अपने बंदों में से। तो ये जो रिसालत होती है ये कस्बी नहीं होती, वहबी होती है, किसी के चाहने पे नहीं मिलती, बल्कि अल्लाह जिसको चाहे जो है वो अता करता है। फबा उबे गदब इन अला गदब, بس وہ اللہ کی ناراضگی لے کر لوٹے. اور یہ محاورہ ہے کہ غصے پہ غصہ, شدید غصہ, وللکافرین عذاب مہین, اور ایسے کافروں کے لیے جو ہے وہ رسوا کن عذاب ہے. مہین ہا و نون, اور ایسے عذاب کو کہتے ہیں جو بہت ہی سخت قسم کا اور ذلیل و خوار کرنے والا ہو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو, ایمان لاؤ, بما انزل اللہ, جو اللہ نے نازل کیا ہے, قالو, کہتے ہیں, نومنو بما انزل علینا, ہم اس پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا ہے. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ, اور جو اس کے باہر ہے وہ اسے انکار کرتے ہیں. تو بنی اسرائیل پر جو کچھ اترا تھا کہتے ہیں کہ اس پہ ایمان لائیں گے, حالانکہ وہ اس میں تبدیلی کر چکے تھے, اور اس کے علاوہ جو ہے اس سے انکار کرتے ہیں. وَهُوَ الْحَقُّ, اور وہ حق ہے, قرآن مجید حق ہے, مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ, اور تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے. تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم تو اپنی کتابوں پر ایمان لائیں گے, قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ, تو اگر تم مومن ہو, ایمان لانے والے ہو, تو تم نے اللہ کے نبیوں کو پھر کیوں قتل کیا؟ کیونکہ تمہاری کتابوں میں تو لکھا تھا کہ نبیوں پر ایمان لانا ہے, ہم کو قتل نہیں کرنا. یہ تمہارا کیسا ایمان ہے کہ تم نے اللہ کے نبیوں کو قتل کر دیا؟ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ, اور تحقیق تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے روشن نشانیاں لے کر, ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ, پھر تم نے جو ہے وہ معبود بنا لیا بچھڑے کو, من بعد ہی اس کے بعد, ایسے ظالم کہ اللہ کے بڑے بڑے معجزے اور نشانیاں دیکھنے کے بعد پھر تم نے بچھڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی. وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ, اور تم ظالم ہو. یہاں پہ ظلم کرنے سے مراد شرک کرنے والے. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ, اور جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا, وَرَفَعْنَا رَافِعِينَ, بلند کردہ, اور ہم نے اٹھایا, فوقکم, تمہارے اوپر, اتور, کوہ طور کو, کیونکہ جب انہوں نے انکار کیا تھا کہ جب تک اللہ کو نہیں دیکھیں ہم نہیں مانیں گے کہ یہ اللہ کے احکامات ہیں, تو اللہ نے ان کے اوپر کوہ طور ایسا کر دیا تھا جیسے کہ گرنے والا ہے, تو گرا کر ایسے کر کے پھر ان سے پکا وعدہ لیا, کہا خذو ما آتینکم بقوتن, پکڑو اس کو جو ہم نے تمہیں دیا ہے قوت کے ساتھ, مضبوطی سے. معنی کیا ہے کہ اس کو ہاتھوں میں بھی لو, اپنے دل میں بھی لو, دماغ میں بھی لو, اور اس پہ عمل کرو. واسمعوا, اور سنو, کان لگا کر سنو. قالوا سمعنا واسمعنا, اور انہوں نے کہا ہم نے سنا پر مانیں گے نہیں. عین سواد یا کے معنی ہوتے ہیں نافرمانی کرنا, جیسے انہوں نے پہلے بھی حتتن کو حنتتن سے بدل دیا, پیچھے آپ نے یحرفونا پڑا, تو یہ کیا کرتے تھے, بدل دیتے تھے. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ, ان کے کفر کرنے کی وجہ سے بچڑے کی محبت ان کے دل کے اندر پلا دی گئی. جیسے دوائی نہیں ہوتی کہ آپ اس کو گھول کر پلاتے ہیں پورے جسم میں رچ بس جاتی ہے, بالکل اسی طرح سے گائے کی جو محبت تھی, اس کے بچڑے کی محبت جو تھی, ان کے کفر کی وجہ سے ایسے تھا جیسے ان کے دلوں کے اندر جو ہے نا گھول کر پلا دی گئی ہے, کسی طرح نکلتی نہیں تھی. کل بے سما یا مرکم بہی ایمان کم ان کن تم مومنین, ان سے کہ یہ کتنا برا ہے تمہارا یہ ایمان جو تمہیں اس طرح شرک کرنے کا حکم دیتا ہے. بے سا کتنا برا ہے, یا مرکم بہی, جو تمہیں جو ہے یہ حکم دیتا ہے, ایمان کم, تمہارا ایمان, یعنی کیسا ایمان ہے کہ عمل کرنے کی بجائے تم کفر کرتے ہو, شرک کرتے ہو, ان کن تم مومنین, اگر ہو تم ایمان لانے والے. کہ عجیب ایمان ہے جو تمہیں ایسی حرکتیں کرنے کو کہتا ہے. قل, کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کانت لکم الدار الاخرت, اگر تمہارے پاس ہے آخرت کا گھر, دار کا روٹ ہے دال بہرا, عند اللہ, اللہ کے نزدیک, خالصتاً, خاص طور پر تمہارے لیے, کیونکہ یہ کہتے تھے ہم اللہ کے چہیتے ہیں اور ہمیں آخرت میں جنت ملے گی, ہمیں جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا. تو اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت میں جنت تمہیں ہی ملنے والی ہے, من دون الناس, تمام لوگوں کے علاوہ, ان کو چھوڑ کر, فَتَمَنَّوُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, تو پھر تم موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے. مین نون یا جو ہے وہ, یہ اس کے معنی کیا ہوتے ہیں, خواہشات, اور یہ لفظ آپ نے جو ہے وہ پیچھے پڑا ہے آیت نمبر 78 میں, امانیہ, یہاں پہ بھی وہی ہے, فتمنا, وہ بس تمنا کرو موت کی اگر ہو تم सच्चे। फिर तुम्हें तो ये तमन्ना करनी चाहिए कि कब मरें और कब जन्नत में जाएं, लेकिन ये मरने से डरते हैं कुफर और शिर्क करने की वजह से। इंसान को असल में मरने से नहीं डर लगता, हम भी अपना अपना जायजा लें, अपने अमाल से डर लगता है। वलें ये तमन्ना हूं, और हरगिज ये तमन्ना नहीं करेंगे अबदन कभी भी, बिमा कद्दमत ऐदीहिम, जो इन्होंने अपने हाथों से आगे भेजा है। वल्लाहु, और अल्लाह अलीमुम, जानता है बिज़्ज़ालिमीन, सुल्म करने वालों को। वला तजिदन्नहुम, और तुम जरूर इनको पाओगे। आरसन नासी, लोगों से भी बढ़कर हरीस। आरसन ज्यादा हरीस, ज्यादा लालची, किस चीज पर? अला हयात, जिंदगी पर। कि जो अहले किताब हैं, अल्लाह को मानने वाले, लेकिन दुनिया में जीने से ये इतनी मोहब्बत करते हैं कि मुशरिकीन से भी बढ़कर। वमिनल्लज़ीना अशरकू, उन लोगों से भी जो कि मुशरिक हैं। क्योंकि शिर्क करने वाले तो शिर्क करने की वजह से डरते ही हैं कि मरेंगे तो क्या होगा। ये ईमान अपने आप को लाने वाले कहते हैं, और लेकिन मरने से डरते हैं। यवद्दु अहदुहुम, तमन्ना करता है इनमें से हर एक, लो यु अम्मारु अल्फा सना, के इनकी उम्र जो है वो 1,000 साल हो। यु अम्मारु, उम्र दी जाए इनको, ऐन मीमरा, इसके लफ्जी मानी होते हैं आबाद करना, इनको उम्र दी जाए अल्फा, 1,000, सनातिन, साल। और सनातिन का रूट है सीन नून वो, सीन नून या, और जो है ये साल के लिए आता है। वमा हुआ, और नहीं है वो जिंदगी, भी मुजाह ही, इनको बचाने वाली। और ये इसका रूट जो है 4 हर्फी है, जेहा जेहा, तो इसके मानी होते हैं हटाना, दूर करना। वमा हुआ भी मुजाह जहे ही, और कितनी लंबी किसी को अगर 1,000 जिंदगी क्यों ना मिल जाए, लेकिन जो है वो इनसे हटाने वाली नहीं है, मिनल अजाबी, अजाब को। तो किसी की कितनी लंबी उम्र क्यों ना हो, खा 1,000 साल, तो वो अजाब को नहीं हटा सकती। अय्यो अमर, अगर उनको 1,000 साल भी उम्र दे दी जाए। वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून, और जो कुछ ये अमल करते हैं अल्लाह इन्हें खूब देख रहा है। अब आप देख लीजिए, एक तो आपने ये रिसर्च करनी है कि आज के इस दौर में औस दर्जे की कितनी उम्र किसी को मिलती है, ज्यादातर अमात किस उम्र में होती हैं, और जो है वो 1,000 साल तो बड़ी बात है, और हमारी जिंदगी के कितने साल गुजर गए, हमने आखिरत की क्या तैयारी की है। दूसरी बात, अहले किताब सवाल करते थे और अमल नहीं करते थे, आज आपका अपना मामला क्या है, जरा इस पे गौर करें कि मैं बातें करती हूँ या फिर अल्लाह की आयात जब सामने आती हैं तो अमल करती हूँ। तीसरी बात, उन्होंने अपनी ख्वाहिशात को दीन बना रखा था, तो आपका दीन और आपका जो अमल है क्या कुरान के मुताबिक है। फिर चौथी बात, क्या मैं अल्लाह के हकूक के साथ हकूकुल इबाद अदा करती हूँ, क्या वकूलुल लिन्नास हुस्ना, ये मेरा तर्ज अमल है। और फिर एक बात जो बहुत अहम है वो ये कि आप जो है हर क्लास में से कम एक उसूल अमल के लिए जरूर लिया करें कि आज मैंने अपनी जिंदगी में इसको जो है वो नाफिज करना है। और फिर साथ साथ अपने दिलों का जायजा लें कि क्या मेरा दिल जो है क्या पत्थर से भी ज्यादा सख्त है, कि इस पर अल्लाह की आयात और प्यारे रसूल की अहदीस जो है वो असर नहीं करती। और फिर अपनी जिंदगी को बदलने की फिक्र करें, इन आयात पर जरूर सोचें कि मेरे अंदर क्या क्या कमी है, मेरे अंदर क्या क्या कोताही है, और मैंने किस तरह से जो है अपनी बदअमली को हुस्ने अमल में बदलना है। मायूस नहीं होना, डिप्रेशन में नहीं जाना, परेशान नहीं होना, सुस्त नहीं होना, कम हिम्मती का मुजाहरा नहीं करना, बहादुर बनना है, क्योंकि ईमान लाने वाले बहादुर होते हैं। अकेले बैठकर अपना मुहासबा करना है, अपना जायजा लेना है, और फिर अपने आप को अमल के मैदान में उतारना है कि नहीं, इंशाल्लाह मैंने अपने अंदर से वो तमाम बुराइयां निकालनी है जो कि अहले किताब में थी, और एक अच्छा और बेहतरीन मुसलमान जो है वो बनना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबसे राजी हो और हमें आखिरत की बेहतरीन तैयारी करने वाला बनाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता نستغفرك ونتوب إليه